19 अप्रैल 1971 त्याग, तपस्या और सेवा की परिभाषा। आज भट्टी का आरंभ करने के लिए बुलाया है। इस भट्टी में सर्व गुणों की धारणा मूर्त बनने के लिए और संपूर्ण ज्ञान मूर्त बनने के लिए आए हो। इसके लिए मुख्य तीन बातें ध्यान में रखनी है। वह कौन सी बकर भाई, आज भट्टी का आरंभ करने के लिए बुलाया है। इस भट्टी में सर्व गुणों की धारणा मूर्त बनने के लिए और संपूर्ण ज्ञान मूर्त बनने के लिए आए हो। सर्व गुणों की धारणा मूर्त और ज्ञान मूर्त, ये लक्ष्य है भट्टी का। इसके लिए बाबा कह रहे हैं, इसके लिए मुख्य तीन बातें ध्यान में रखनी है। कौन सी ज्ञान की तीन बातें कौन सी है? त्याग, तपस्या, सेवा और निराकारी, निर्विकारी और निरंकारी। दूसरा, तीसरा, मनसा वचा कर्मणा, क्या? त्याग, तपस्या, सेवा। चलो वो भी है। और त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री और त्रिलोकीनाथ। और ज्ञान के तीन शब्दों की लिस्ट, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। मैं मास्टर ब्रह्मा, मास्टर विष्णु और मास्टर शंकर हूँ। और मधुबन के आंगन में कोई लिखा हुआ है ना, निमित्त, निर्माण और निर्मल, और निर्माण, निर्मल भी कह सकते हैं। तो निमित्त, निर्माण और निर्मल, निर्मल वाणी, निमित्त भाव, अचल, अडोल और अचानक, एवर रेडी और बहुत काल। अचानक, एवर रेडी हो और बहुत काल का अभ्यास, ये तीन शब्द है। और ज्ञान मूर्त और गुणों की धारणा मूर्त बनने के लिए कौन सी तीन बातें हैं? ज्ञान मूर्त, याद मूर्त और धारणा मूर्त, ज्ञान गुण और शक्तियां। ज्ञान गुण और शक्तियां और आदि मध्यम, तो क्या
तीन शब्द
ने उसका कुछ तो बताओ। ब्राह्मण, देवता, फरिश्ता और देवता, ये तीन स्वरूप। ज्ञान गुण शक्ति का बोल दिया। और
तीन शब्द,
स्थापना, पालना और विनाश। वैसे तो धारणा छोड़कर बाकी तीन शब्द बहुत है। त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी और त्रिलोकीनाथ, वो बोल दिया माता जी ने। और निराकारी, वो भी हो गया। स्थूल वतन, सूक्ष्म वतन, मूल वतन, तीन तबके,
तीन तबके
था ना, वो हो गया। बाप, टीचर और सदगुरु, मास्टर, टीचर, तीन तख्त,
तीन बिंदे,
कौन से तख्त? तीन तख्त, तीन बिंदे, तीन सर्टिफिकेट। मन पसंद, बाप पसंद, परिवार पसंद, तीन सर्टिफिकेट लेने हैं। तीन बिंदु, मैं आत्मा बिंदु, बाप बिंदु और ड्रामा बिंदु। तीन बिंदु, तीन सर्टिफिकेट और तीन तख्त। कौन से तीन तख्त है? स्वराज्य का तख्त अभी, बाप का दिल तख्त और भविष्य राज्य का तख्त। तीन तख्त, और तीन में आज कल और कल, यह है ज्ञान का सार। आज कल आज और कल, यह है ज्ञान का सार। दानी महादानी और वरदानी, त्यागी सर्वंश त्यागी और सर्वस्व त्यागी। तीसरा नेत्र, दूसरा नेत्र और पहला नेत्र। निद्रा जीत, कर्मेंद्रिय जीत, माया जीत, विकारो जीत। माया जीत, निद्रा जीत, माया जीत, कर्मेंद्रिय जीत और विकारो जीत। और
नॉलेजफुल पावरफुल
सक्सेसफुल, इस मूल्य में आया है वो आगे कहीं। तो नॉलेजफुल भी, पावरफुल भी और सक्सेसफुल भी। और
तीन,
दो की लिस्ट बहुत बड़ी है, दो की दूसरी लिस्ट, ये तीन की लिस्ट नहीं, वो नहीं। तीन क्या? नहीं, वो तो ठीक है, यादगार है। तीन क्या?
भोलानाथ, बालानाथ,
भोलानाथ, भोलानाथ और भालानाथ। भोलानाथ अर्थात जिसे, वो भोलानाथ है, उसे सब कुछ, वो भोला है, अति भोला है, ये उसका स्वरूप है। दूसरा है भूला हुआ है, उसे किसी के अवगुण चित्त पर नहीं रखता है। तीसरा है उसका धर्मराज का रूप, भालानाथ। और भी कोई याद है किसी का? जानना बाप को, जानना बाप को मानना और बाप की श्रीमत पर चलना, ये भी इस मूल्य में आया है कहीं, इसी में आया है। तीन बातें, यहाँ दो बातें ली है पर तीन बातें हैं हमेशा जो मुरलियों में आती है। बाप को जाना कितना है, माना है, ये तो आसान है। थर्ड कैटेगरी जो है मानना, आने वाली जो मुरली है संडे की, उसमें बाबा ने तीन भागों में विभाजित किया है बच्चों को, ये तीन भाग है। तो उसको तीसरी जो कैटेगरी, उसमें बहुत कम है। पहली जो दो कैटेगरी है, जानने वाले और मानने वाले, उसमें बहुत अच्छे है। परंतु चलने वाले, किसमें चलने वाले, मैं कौन, इस स्वरूप में चलने वाले बहुत कम है। और
बाबा मुरली मधुबन,
एक बाबा, एक मुरली और एक मधुबन, सखी रे मैंने पायो तीन। बोल और दूसरे थोड़े पॉजिटिव बताओ,
ये करने से पॉजिटिव बनेंगे।
अच्छा, झाड़ू पोछा और बर्तन करते हुए श्रेष्ठ स्थिति रखना, यही ना? हाँ, नहीं, करते हुए श्रेष्ठ ब्रैकेट में है ना, पहले तीन हो गए, बाकी तो ब्रैकेट में है सर। बीज रूप और ज्वाला में क्या अंतर? सहज योगी, राजयोगी और निरंतर योगी। सहज योगी, राजयोगी और निरंतर योगी, ये तीन हो सकते हैं। और चलाओ जरा बुद्धि के घोड़े,
मन बुद्धि संस्कार,
बुद्धि और संस्कार, आत्मा की त्रिमूर्ति शक्तियां, त्रिमूर्ति सर्टिफिकेट, वो तो बोल दिया परंतु वो शब्द है। और कम बोलो धीरे बोलो मीठा बोलो, बोलने का। और क्या, क्यों और कैसे, ब्रैकेट में इससे परे रहना, ठीक है? तो आज भट्टी का आरंभ करने के लिए बुलाया है। इस भट्टी में सर्व गुणों की धारणा मूर्त बनने के लिए व ज्ञान मूर्त बनने के लिए आए हो, इसके लिए मुख्य तीन बातें ध्यान में रखनी है। वह कौन सी? जिन तीन बातों में संपूर्ण ज्ञान मूर्त और सर्व गुण मूर्त बनकर ही जाओ। सारी नॉलेज का सार इन तीन शब्दों में समाया हुआ है, वह कौन से शब्द है? एक त्याग, दूसरा तपस्या और तीसरा सेवा। इन तीन शब्दों की धारणा मूर्त बनना अर्थात संपूर्ण ज्ञान मूर्त और सर्व गुणों की मूर्त बनना। त्याग किसको कहा जाता है? निरंतर त्याग वृत्ति और तपस्या मूर्त बनकर हर सेकंड, हर संकल्प द्वारा हर आत्मा की सेवा करनी है। निरंतर त्याग वृत्ति और तपस्या मूर्त बनकर हर सेकंड हर संकल्प द्वारा हर आत्मा की सेवा करनी है। सच्चे सेवाधारी सच्ची सेवा में सफलता के दो साधन है अंजलि बहन, संडे की मुरली का वरदान कौन से दो साधन? एक है त्याग और दूसरा है तपस्या। त्याग की क्या परिभाषा दी थी? नहीं, वरदान में, मुरली में नहीं, संडे की मुरली का वरदान वो किसी और वरदान में था, स्वयं के आराम का भी त्याग करना।
परसों के वरदान
का पूछ रहा हूँ, तपस्या की क्या परिभाषा दी थी? एक बाप एक के लव में लवलीन, बाप के लव में लवलीन, ये थी तपस्या की परिभाषा। प्रेम सुख शांति आनंद सुख के सागर में समाये हुए, ये है तपस्या। और त्याग संकल्प से, त्याग संकल्प से त्याग करने वाले स्वरूप के त्यागी, ज्ञान स्वरूप से त्यागी, मर्यादा मजबूरी और परिस्थिति से त्यागी नहीं, केवल परिस्थिति के आधार पर त्याग करने वाले नहीं, परंतु संकल्प से त्यागी। निरंतर त्याग वृत्ति और तपस्या मूर्त बनकर हर सेकंड हर संकल्प द्वारा हर आत्मा की सेवा करना, यह सीखने के लिए भट्टी में आए हो। वैसे तो त्याग और तपस्या दोनों को जानते हो, फिर भी अभी क्या करने आए हो? किसी ने कहा कर्मों में लाने के लिए, बल जानते हो, लेकिन अभी जो जानना है उसी प्रमाण चलना है। दोनों को समान बनाने के लिए आए हो, अभी जानने और चलने में अंतर है और बहुत बड़ी खाई है बीच में, महान अंतर है। अब इस अंतर को क्या करो, मानना इधर और चलना उधर, बीच में खाई कैसे मिटाएंगे? इस अंतर को समाप्त करने के लिए भट्टी में आए हो। ऐसे तपस्वी मूर्त और त्याग मूर्त बनना है जो आपके त्याग और तपस्या की शक्ति के आकर्षण दूर से प्रत्यक्ष दिखाई दे। जैसे उदाहरण दे रहे बाबा, स्थूल अग्नि का अग्नि व प्रकाश अर्थात अथवा गर्मी दूर से ही दिखाई देती है व अनुभव होती है, वैसे आपकी तपस्या और त्याग की झलक दूर से ही आकर्षण करे। आबू में, आबू के जंगलों में आग लगती है ना कभी कभी, नीचे से जब ऊपर आते हैं, ऊपर से जब नीचे जाते हैं तो दूर से दिखती है कहीं जंगल में आग लगी हुई। छोटी सी आग है परंतु दूर से दिखाई देती है। तो जैसे स्थूल अग्नि व प्रकाश अथवा गर्मी दूर से ही दिखाई देती है वह अनुभव होती है। और क्या लगता है, आग जल रही है और भी क्या अनुभव होता है कि अभी क्या होगा, हिलेगी आग। एक पेड़ को आग लगी है, दूर से दिखाई दे रहा है, एक पेड़ को आग लगी है पर अभी थोड़ी देर में आग दावानल बन जाएगी। दावानल अर्थात जंगल की आग को दावानल कहते हैं। तो चारों ओर फैलेगी आग। तो ऐसे दूर से ही देखे कोई एक तपस्वी आत्मा तो दूर से ऐसा लगे कि अभी इसमें तपस्या है, अभी फैलेगी ये लहर, आग सारे जंगल में फैलेगी। वैसे आपकी तपस्या और त्याग की झलक दूर से ही आकर्षण करे। हर कर्म में त्याग और तपस्या प्रत्यक्ष दिखाई दे, तभी सेवा में सफलता पा सकेंगे। सिर्फ सेवाधारी बनकर सेवा करने से जो सफलता चाहते हो वह नहीं हो पाती, लेकिन सेवाधारी बनने के साथ साथ त्याग और तपस्वी मूर्त भी हो तब सेवा का प्रत्यक्ष फल दिखाई देगा। तो सेवाधारी तो बहुत अच्छे हो, लेकिन सेवा करते समय त्याग और तपस्या को भूल नहीं जाना। तीनों का साथ होने से मेहनत कम प्राप्ति अधिक होती है, समय कम सफलता अधिक। तो इन तीनों को साथ जोड़ना, किन तीनों को जोड़ना, त्याग को, तपस्या को और सेवा को, यह अच्छी तरह से अभ्यास करके जाना है। तो ज्ञान मूर्त, दिव्य गुणों के धारणा मूर्त बनने जीने के लिए इस भट्टी में आए हो। ये दो चीजें लक्ष्य है। तो क्या करना है? तीन शब्दों को धारण करना है। एक है त्याग, दूसरा है तपस्या और तीसरी है सेवा। ये तीनों ही चीजें अलग अलग ना हो, तीनों ही चीजों को जोड़ना है, तीनों ही चीजें एक हो जाए। जब तीनों ही चीजें एक हो जाएगी तब मेहनत कम, सफलता ज्यादा, प्राप्ति ज्यादा, समय कम। सेवाओं में सफलता केवल सेवाधारी बन कर जाने से नहीं होगी। जिस सेवा में त्याग वृत्ति ना हो वहां सफलता नहीं हो सकती। अब प्रश्न है, त्याग किस बात का? पांच मुख्य बातें हैं। किन बातों का त्याग करना है? एक तो पुराने संस्कारों का त्याग, दूसरा इच्छाओं का त्याग, तीसरा मैंपन का त्याग, मान शान का त्याग। चलो और ज्यादा होंगे पॉइंट्स, और
आराम का त्याग।
देहभान का त्याग, विकारों का त्याग, पुराने संस्कारों का त्याग, इच्छाओं का त्याग, देह भान, देह बंधन, देह अभिमान, देह अभिमान, देह अहंकार, देह के सर्व संबंध, ये सारी बातें उसमें है देह में। और नाम मान का त्याग, आसक्तियों का त्याग, पदार्थों का, कुसंग का त्याग, और सुख सुविधाओं का त्याग कर दो। एक्स्ट्रा, इसका निर्धारण कौन करेगा कि एक्स्ट्रा क्या है और एक्स्ट्रा क्या नहीं? आपके लिए जो एक्स्ट्रा नहीं है वो किसी और के लिए एक्स्ट्रा हो सकती है। व्यर्थ संकल्प, ये एक सबसे महत्वपूर्ण त्याग है। तो एक है देहभान, देह अभिमान, देह अहंकार, दूसरा है विकार, तीसरा है व्यर्थ, चौथा है निगेटिव, पांचवा है इच्छा है, छठवा है नाम मान। ये सारे त्याग है। कमजोरियों देखने का त्याग करो। कैसे करेंगे त्याग? किसी बीमार व्यक्ति से कहो जाकर, तुम अपनी बीमारी छोड़ते क्यों नहीं हो? वो कहेगा मैं क्या करूं, मेरे हाथ में थोड़ी है छोड़ना। तो नागेश भाई अब क्या करे? बीमार व्यक्ति को अपने जाके कहा कि तुम बीमार क्यों हो, ठीक क्यों नहीं हो जाते? हम देखो कितने अच्छे हैं, एकदम स्वस्थ, तुम क्यों नहीं ठीक हो जाते? वो कहेगा मैं क्या करूं, मेरे हाथ में ही नहीं है। सिगमंड फ्राइड करके एक पाश्चात्य जगत में बहुत बड़ा मनोचिकित्सक हुआ है, उसने अपने संश्लेषण में लिखा हुआ है एक कहानी जिसमें ग्रामीण व्यक्ति, गांव का रहने वाला भोला वाला व्यक्ति एक दिन शहर के होटल में आता है रुकने के लिए। रात में सोता है, कमरे में एक दिया जला हुआ है, अंधेरे में सोने की आदत है, दिए को फूंकता है, दिया नहीं बुझता है, रात भर फूंकते रहता है दिए को, परंतु फूंक बुझता नहीं है दिया। परेशान हो जाता है, क्या करूं अब, कैसे बुझाऊं, इस कमरे में प्रकाश ही प्रकाश है, सो नहीं पाता। सुबह सुबह उठ के होटल के मैनेजर के पास जाता है कि कैसा दिया है, रात भर मैं फूंकता रहा परंतु ये बुझा नहीं। मैनेजर कहता है अरे ये दिया मिट्टी का नहीं, ये विद्युत का दिया है, हमारे सारे ही प्रयत्न क्या ऐसे ही इन विकारों को फूंकने में जा रहे हैं? हम भी फूंक रहे हैं, काम फूका नहीं मरा नहीं बुझा, क्रोध फूका फूक ही रहे हैं कब से परंतु बुझ नहीं रहे हैं दिए, पानी से भी नहीं बुझ रहे है। क्या चेतन के संकल्प अवचेतन या अचेतन के विकारों को समाप्त कर सकेंगे? चेतन के छोटे मोटे संकल्प, विकारों की जड़ें अवचेतन में है, विकारों की जड़ें सबको कॉन्शियस माइंड में है, क्रोध वहां बैठा हुआ है, हम केवल उस ग्रामीण की तरह फूक रहे हैं, फूक रहे हैं, फूक रहे हैं, वो पूछता ही नहीं कहां है इनकी जड़ें। अब चेतन तक पहुंचना होगा, विकारों को समूल रूप से अगर नष्ट करना है तो, उन्मूलन अगर करना है उनका तो मैनेजर बनने से भी नहीं होगा, बटन को ढूंढना पड़ेगा, एक एक विकारों की जड़ें कहां है उनको ढूंढना पड़ेगा। तपस्या शब्द तप से निकला है, तप शब्द का क्या अर्थ है? पथ पर चलते रहो। अच्छा, त्याग का भी ऐसा ही है, त्याग शब्द जो है, जैसे कोई कहते हैं ना गीता का सार क्या है, तो गीता शब्द कंटिन्यूस बोलते रहो, देखो क्या होता है, गीता 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 त्यागी त्यागी त्यागी, तो गीता बहन अपने ही नाम का जप करते रहो, गीता 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 करते 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 त्याग हो जाता है। वैसे तप शब्द का अर्थ, ये तो एक दूसरा अर्थ बताया, उसका उल्टा कर दो तो पथ होता है, तप शब्द अर्थात जलना, सूखना, जब कुछ जलती है लकड़ी तो धुआं निकलता है, धुआं क्यों निकलता है, अग्नि की वजह से धुआं नहीं निकलता, उस लकड़ी में अगर गीली है पानी है तो वो धुआं ज्यादा निकलता है, अगर सूखी लकड़ियों को जलाओ तो धुआं इतना नहीं होता है। आत्मा विकारों से भीगी हुई है, उसको जलाना है, यह है भट्टी का लक्ष्य, जितना जहां पानी कम उतना वहां धुआं कम होगा। अगर पानी बहुत ज्यादा है और जब जलाने लगोगे तो ऐसा धुआं निकलेगा कि कुछ भी नहीं दिखेगा, पता नहीं कहां आ गए, तपस्या कर रहे हैं क्या कर रहे हैं। वासनाओं का जल आत्मा में है, अग्नि को तेज करना पड़ेगा, अग्नि को प्रज्वलित करना पड़ेगा, प्रचंड अग्नि चाहिए, नहीं तो ये लकड़ी जलेगी नहीं, बहुत गीली है। दो विधि, एक तो पानी थोड़ा कम गीली चाहिए या तो फिर अग्नि ज्यादा चाहिए। पानी तो आ चुकी है, पानी तो आ चुका है जन्म जन्म के विकर्मों से। तीसरा तो सूखी लकड़ी है जहां जल रही है वहां घुसना पड़ेगा। एक चोर था, एक रात एक राजमहल में गया चोरी करने और सुना राजा की बातें, राजा अपनी रानी से कह रहा था कि हमारी जो कन्या है विवाह योग्य हो गई है, क्यों ना हम इसका विवाह किसी ऐसे योग्य व्यक्ति से करें कि जो तपस्वी है। वो कहता है कल ही मैं वजीर को भेजूंगा गंगा के तट पर, वहां जो साधु संन्यासी योगी बैठे हुए है उनमें से जो भी होगा अच्छा, कोई मान जाए राजी हो जाए तो उसी के साथ मेरी बेटी का विवाह कर दूंगा। तो ये चोर सोचता है कि मौका बहुत अच्छा मौका आया है, तो दूसरे दिन सुबह सुबह पहुंच जाता है और साधु के वस्त्र धारण करता है नंग धड़ंग और सारे शरीर में राख लगा लेता है और एकदम तपस्या मूर्त में बैठ जाता है सारे साधुओं के बीच में जहाँ फिर बाकी साधु भी बैठे रहते हैं। राजा का वजीर और सैनिक आते हैं, एक एक साधु से अनुनय विनय करते हैं कि भाई राजी हो जाओ, पर साधु तो अपनी तपस्या में मग्न है, ध्यान तक नहीं देते उसकी तरफ, वजीर की तरफ। जब इसके पास पहुंचते तो ये सोचता है मैं भी क्यों ध्यान दूं, मुझे भी थोड़ा थोड़ा कर तो दिखानी पड़ेगी ना, इतना जल्दी मान जाऊंगा तो पकड़ नहीं लेंगे कि ये क्या ऐसा कैसा साधु है। वो भी थोड़ा अपना दिखाता है, थोड़ी सी अकड़ पर थोड़ा सा रिस्पॉन्स देता है उनके जो प्रश्न है उनका। तो जो वजीर और सैनिक राजा के पास आते हैं कहते हैं कि बहुत मुश्किल है, कोई मान नहीं रहा। हाँ, परंतु एक युवा सन्यासी जरूर है, हो सकता है अगर आप चलो तो वो मान जाए बाकी तो देखने को भी तैयार नहीं है। तो दूसरे दिन राजा अपनी सेना के साथ साधु से मिलने के लिए पहुंचते हैं साधु देखता है, वो चोर देखता है कि मैं झूठा मूठा साधु का वेश धारण करता हूं तो राजा मेरे चरणों में आ रहा है। केवल मैं ढोंग कर रहा हूं, स्वांग धारण किया हूं एक साधु का और साधु की संगति में हूं, तो मेरा मान देखो कितना बढ़ गया। अगर मैं सचमुच ही साधु बन गया तो, और संकल्प करता है कि आज से सचमुच ही एक तपस्वी बनना है और बन जाता है। तो ऐसी आत्माओं का संग करना जो त्याग मूर्त है और जो तपस्वी मूर्त है, जिनके जीवन से त्याग झलकता है, जैसे दूर से अग्नि दिखाई देती है और अनुभव होता है, जैसे उनके जीवन को देखते ही वैसी धारणाएं दिखाई देती है। उनके बोल भी शक्तिशाली होते हैं, परंतु उनके बोल से उनका चिंतन शक्तिशाली होता है। उनके चिंतन तो शक्तिशाली होता है, परंतु उनके चिंतन से भी उनकी धारणाएं शक्तिशाली होती है। ऐसी तपस्वी आत्माएं, ऐसी सूखी लकड़िया जहां होगी आशीष भाई वहां चिपक जाना। तो न मालूम उस साधु की तरह, पता नहीं हम में भी क्या परिवर्तन आ जाए, बता नहीं सकते क्या परिवर्तन आ जाता। उसी तरह दिखा है, एक चोर है, भागता है भागता है भागता है, उसके पीछे पूरी सेना राजा की, कहां जाऊं और यहां जाऊं और वहां जाऊं, यहां भागता है वहां भागता है, सारे रास्ते उसे पता है, यहां से निकल के वहां से निकल कर अब ऐसी जगह पहुंचता है कि सामने खाई है। सोचता है अब क्या करूं, अपने कपड़े निकालता है और खाई में फेंक देता है और राख लगा के बैठ जाता है वहां पर। राजा के सिपाही आते हैं, कहते हैं ये कोई भला आदमी दिखाई देता है। कोई तपस्वी पूछते हैं, महाराज क्या आपने किसी चोर को यहां से जाते हुए देखा? वो केवल दृष्टि देता है और बड़ी गंभीर मूर्त, उनको लगता है शायद कोई गलती की, इससे पूछ के जाने दो, प्रणाम करते हैं और चले जाते हैं। बस उस चोर को वही संकल्प आता है कि जिस समय जिस पल जैसे ही वो कपड़े मैंने फेंके, उसी समय जैसे जीवन में क्रांति घटित हुई, एक ऐसी क्रांति हुई कि कभी सोचा ही नहीं था ऐसा हो सकता है। कपड़े फेंक दिए, राख लगा दी, इतना करने से ये मेरे चरणों में झुक गया। जब चोर था तो दिन रात लोग गालियां ही देते रहते थे, आज तक कोई नहीं मिला जिसने तारीफ की, आज तक कोई नहीं मिला जो चरणों में झुका, और ये देखो केवल शरीर में राख क्या लगा ली और चरणों में झुक गए। दीदी दादी 2 साल से ज्ञान में और 10 साल वाले भी दीदी दादी कहते हैं, ये कोई मेहनत है? संडे की मुरली सत्संग बहुत आवश्यक है इस जीवन में। प्रथम भगति संतन कर संग, रामचरितमानस की जो नवदा भक्ति है उसमें भागवत की अलग जो उस दिन सुनाई थी, परंतु रामचरितमानस की नवदा भक्ति अलग है। प्रथम भगति संतन कर संग, दूसरी मम कथा प्रसंग, रति मम कथा प्रसंग। पहली भक्ति है संतों का संग करना, महान आत्माओं का संग करना, महान आत्माओं के संग से पता नहीं उनके जीवन की, उनके निकले हुए कोई एक बोल हृदय को स्पर्श कर जाए और जन्म जन्मांतर की कमजोरी विदा हो जाए। प्रथम भगति संतन कर संग, दूसरी रति मम कथा प्रसंग, दूसरी मेरी जो कथा है, मेरे जो बोल है, वाणी है, उसमें रति, रति अर्थात प्रेम की पराकाष्ठा को रति कहा जाता है। रति बहुत ही ऊंचा शब्द है हिंदी भाषा में, एक है प्रेम एक है रति, पराभक्ति को रति भक्ति कहा जाता है। तो दूसरी रति मम कथा प्रसंग, संतों का संग करना, महानात्माओं का संग करना। ओम शांति।
राम जी की इच्छा से किसकी बारी
जाएगी? राम जी की इच्छा। आज 20 तारीख है।